नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धश्रज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते रक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की थी भगवद गीता का, ये जो पहला सत्र था जिसमें किस प्रकार से हर एक जीव सुख की अभिलाषा लेकर इस भौतिक संसार में उसका अराइवल हो गया है और उसके डिपार्चर के लिए भगवद गीता की सहायता आवश्यक है। तो हमने इस विषय पर आगे बढ़ते हुए हैं, हम चर्चा करेंगे आज उसी विषय को कंटिन्यू करेंगे। तो दो सुखों का वर्णन करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, एक था स्थायी सुख और दूसरा था अस्थायी सुख, टेम्पररी हैप्पीनेस और एक था परमानेंट हैप्पीनेस। तो जनरली मैंने कहा था कि हमारे दुखों का एक में कारण है अज्ञानता, इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ हमारी मिजरीज का कारण है इग्नोरेंस जो है। तो अज्ञानता के कारण हम इस संसार में दुख उठा रहे हैं, तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता। और वो ज्ञान हमें दो प्रकार का जो ज्ञान है, इसे आज पता नहीं फट रहे हैं वाला हरे कृष्ण। तो दो प्रकार का जो ज्ञान है, एक तो है आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है भौतिक ज्ञान।
उसका मैं देख लिया था
हरे कृष्णा अभी ठीक हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आध्यात्मिक ज्ञान और जो भौतिक ज्ञान है, ये दो प्रकार के ज्ञान हमें प्राप्त करने हैं तो हमें श्रद्धा की आवश्यकता है। तो जो भौतिक ज्ञान है वो अधिकतर हमें इस भौतिक जगत का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, या विशेष रूप से जो भौतिक ज्ञान डील करता है अधिकतर हमारे शरीर से संबंधित। और भौतिक ज्ञान हमें ये भरोसा दिलाता है कि ये जो शरीर ही सर्वे सर्वा है, इसके द्वारा ही अत्यधिक भौतिक आनंद हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम अपने जीवन के बारे में भौतिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं या जान नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है या जीवन का ज्ञान है वह हमें भगवद गीता से प्राप्त होता है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान जिसे सर्वश्रेष्ठ नॉलेज कहा गया है या सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जैसे लोग जब बोलते हैं मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति के अंतर में क्या अंतर, एक मरे हुए व्यक्ति में और एक जीवित व्यक्ति में, दोनों में हम बोलते हैं एक डेड बॉडी है और दूसरा कौन सा बॉडी है, लिविंग बॉडी है। तो दोनों में एक चीज की समानता है, कौन सी समानता है, बॉडी शरीर, मृत शरीर और जीवित शरीर। तो जो भौतिक ज्ञान है वो केवल शरीर का ज्ञान देता है, और इस शरीर का ज्ञान ये वास्तव में हमारे अज्ञानता का कारण है। लेकिन शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जीवन है, लाइफ है। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि एक बूढ़ी व्यक्ति, एक स्त्री मार्केट में जाती है और एक पिंजरा खरीदती है और उसके अंदर एक पंछी को रखती है, गोल्डन केज। उसका पिंजरा कैसे था, सोने का था, लेकिन उसके अंदर उसने एक पंछी को रखा और उस पिंजरे को क्लीन करती रहती थी, सफाई करती रहती थी दिन रात, लेकिन पंछी को उसने कोई खिलाना पिलाना, उसका देखभाल नहीं की, एक दिन वो मर जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति है। भौतिक ज्ञान केवल हमें ये सिखाता है किस प्रकार से ये जो भौतिक देह है, हम भौतिक शरीर है, उसकी देखभाल की जाए। मतलब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी फेरारी कार है, सोचो, या रोल्स रॉयस कार है, वो खरीदता है और जब लंबा ट्रैवलिंग करता है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस और कई लोग आते हैं बचाने के लिए, बचाव कार्य करने के लिए। तो किस चीज को बचाएंगे वो, किसको बचाएंगे, व्यक्तियों को बचाएंगे। कार इतनी महंगी है, करोड़ों की कार है, कार को नहीं बचाएंगे, किसको बचाएंगे, शरीर को या व्यक्ति को बचाएंगे। तो उसी प्रकार से देखा जाए जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस शरीर से भी। तो हमें जो ज्ञान आवश्यक है वो हमारे जीवन के बारे में ज्ञान अर्जन करना, ये हमारा परम लक्षण है। जनरली व्यक्ति पूरे जीवन भर काम करते रहता है, पूरे जीवन भर इकट्ठा करता रहता है, एकत्रित करता रहता है वस्तुओं को, स्थान को, व्यक्तियों को, और एक ऐसा समय आता है कि उससे वो चीजें छीन ली जाती हैं, जबरदस्ती छीन ली जाती हैं। अंतिम समय क्या है, मृत्यु का समय, उस समय हमसे हर चीज को छीना जाता है। तो ये हमारी मूर्खता एक प्रकार से, बुद्धिमानी का कार्य है क्या, क्या पूरे जीवन भर किसी चीजें इकट्ठा करो और एक समय आएगा कि आपसे सारी चीजें छीनी जाएगी, तो आप क्या होंगे, सर्वाधिक दुखी होंगे। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि संसार में हमारे जितने भी प्रयास है वो केवल दुखी होने के लिए है। किस चीज के लिए है, दुखी होने के लिए है, जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं। और अंतिम रूप में देखा जाए कि जो भी चीजें हम एकत्रित कर रहे हैं पूरा जीवन लगाकर, अंतिम समय में उनको हमसे छीना जाएगा। कोई व्यक्ति कहे कि आपको मैं 1 करोड़ रुपए देता हूँ और लेकिन ना 1 महीने के बाद आपसे वापस ले लूंगा, तो अच्छा होगा ये, नहीं, दुखी हो जाएंगे हम। अच्छा ही कि ना दे, दे तो कैसे होना चाहिए, हमारे पास परमानेंटली होना चाहिए। तो भौतिक जगत में हम केवल एकत्रित करते वस्तुओं को पूरे जीवन भर और अंत में देखा जाता है कि हमसे उन चीजों को छीना जाएगा। तो अल्टीमेटली हम केवल दुखों को ही आमंत्रण देते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान को समझना या अर्जन करना ये परम आवश्यक है। इसी कारण से भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मनुष्यों में ये खासियत है, मनुष्यों में ये विशेष योग्यता है कि वो सोच सकता है, जिज्ञासा कर सकता है, प्रश्न कर सकता है, सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। इसी कारण से महाभारत का वो फेमस श्लोक हम हमेशा सुनते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतात पशुभि नरानाम। महाभारत कहता है कि यदि इतना अमूल्य जीवन प्राप्त करने के बावजूद भी यदि हम उन्हीं कार्यों में लगे रहेंगे बारंबार, तो हमें एक पशु ही समझा जाएगा। इसी कारण से भगवद गीता में भी भगवान इस चीज की चर्चा करते हैं। तो यदि हमारे पास इतनी उन्नत बुद्धि हो और उस बुद्धि का उपयोग केवल हम दुखी होने के लिए करें तो हमें क्या कहा जाएगा, एक पशु। इसी कारण से महाभारत हमें ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। इसलिए वो कहता है कि व्यक्ति को एक पशु के भांति जीवन यापन करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जनरली हम ये चीजें हमेशा सुनते हैं, एक पशु है, पशु कौन से 4 कार्य करता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो आहार देखा जाए हमें तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है आहार के लिए। पहले तो बचपन से पढ़ाई करनी पड़ती है, जॉब ढूंढना पड़ता है, मंथली सैलरी आती है तो हम मार्केटिंग के लिए जाते हैं, फिर घर में जाते हैं तो गैस चाहिए, कुकिंग करो उसके बाद हम क्या करेंगे, खाएंगे। लेकिन एक पशु के लिए इतना प्रयास नहीं है, बल्कि पशु पक्षी भी, पक्षी को देखो वो खाने के लिए दूर दूर उड़ के जाता है, और कई विदेशों से भी पक्षी आते हैं, जैसे उड़ीसा में कहां कहां से, रशिया से, साइबेरिया से पक्षी आते हैं, इतना दूर उड़ उड़ के यहाँ कुछ खाने के लिए। हम लोग भी उड़ उड़ के कहां जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और वहां जाके मैकडोनल्ड्स में खाना चाहते हैं या किसी और में खाना चाहते हैं। तो पशुओं के जैसे ही हम उड़ना सीख गए हैं और दूर दूर जाकर खाना भी सीख गए हैं। मैं सोच रहा था कि मनुष्य में इतनी वैरायटी भोजन की है जितनी किसी और चीज में नहीं है। एक गाय कभी सोच नहीं सकती, गाय के लिए घास बोला गया है तो घास ही खाएगी, गाय ये नहीं सोचेगी घास है अभी घास के पकौड़े बनाती हूँ, हाँ ऐसी गाय सोच सकती है। लेकिन मनुष्य को एक आलू दे दो, उस आलू का क्या क्या नहीं बनाएगा, वो क्या क्या बनाएगा,
चिप्स,
आलू के चिप्स हो गए, आलू का पकौड़े हो गए, आलू का हलवा भी हो गया, आलू की सब्जी हो गए, कितने सारे फिंगर चिप्स हो गए, समोसे हो गए, तो इतनी सारी वैरायटीज मनुष्य चाहता है। तो इसी कारण से सारा जो एजुकेशन है, सारा जो भौतिक ज्ञान है वो केवल अपने, और इसी को हम क्या सोचते हैं, सुख मान के बैठे हैं। यहाँ तक विदेशों में क्या क्या नहीं खाया जाता, हमारे एक डिवोटी रहते गुवाहाटी के उस तरफ, उन्होंने कहा चाइना के कुछ डॉक्टर्स उनके गांव में आए थे, 15 डॉक्टर्स का टीम था, वो ब्रह्मचारी है दिल्ली टेम्पल में, तो उन्होंने कहा वो जब आए तो पहले हमारे गांव में बहुत सारे कुत्ते भी थे, बिल्लियां भी थी, चूहे भी थे, सांप भी थे, कॉकरोच और बिच्छू वगैरह थे, जब से डॉक्टर्स आए हैं तब से ये चीजें देखना खत्म हो गई है, वो सारे मिल मिल के खा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखो मनुष्य का निर्धारित भोजन है, लेकिन किस चीज के लिए वो पागल है, जिह्वा की तृप्ति के लिए। इसलिए कल हमने वो श्लोक पढ़ाया था, यही संस्पर्श जा भोगा दुख एवते अद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ये जो टेम्पररी आनंद है उससे रममान नहीं होता है, वो चतुर कहलाता है जो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो हम सब प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आहार प्राप्त किया जाए, और दूसरी चीज क्या है, निद्रा। आपको कहा जाए, भाई व्यक्ति जनरली ऑफिसेस में बिजी रहता है तो केवल संडे का इंतजार करता है, क्यों इंतजार करता है पता है आपको, संडे में जल्दी नहीं उठूंगा, सोऊंगा, क्योंकि सोने से बढ़कर आनंद नहीं है इस संसार में। वही व्यक्ति सुखी माना जाता है आजकल के समाज में जिसको अच्छी गहरी नींद आती है। कैसी नींद आती है, गहरी, डीप स्लीप। हाँ मतलब पशुओं के समाज में ये प्रॉब्लम नहीं है, पशुओं को कोई उनका हार्ट ब्रेक नहीं करता, मनुष्यों के हार्ट क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उनको वो समस्या नहीं है नींद की। हाँ कुत्ता जब भी समय मिले क्या करता है, सोता ही रहता है, बिल्ली 50-70% दिन में सोती रहती है, पोलर का जो भालू है कितना सोता है, 6 महीने सोता है, 6 महीने जगता है। तो हम कंपटीशन नहीं कर सकते उनके साथ, खाने के लिए भी पशुओं के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, और निद्रा के लिए भी हम कंपटीशन नहीं कर सकते। हमें नींद आती है तो अलार्म्स, कुछ अलार्म्स तो अभी ऐसे हैं कि पीलो ही अलार्म है, आप लगा दो तो पीलो बिल्कुल ब्राइट हो जाएगी सुबह आप उठोगे तो मतलब हम पशुओं के साथ एक प्रकार की स्पर्धा कर रहे हैं, आहार निद्रा, और तीसरी चीज क्या है, भय। तो क्यों ये चीजें बारंबार कहला जाती है, क्योंकि हमारा स्वभाव है भूलना, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि बारंबार हमें याद दिलाने से क्या होता है कि हम सावधान रहते हैं। तो तीसरी चीज है आहार निद्रा भय। भय मतलब हम सब लोग भयभीत है इस संसार में, और भय के लिए क्या करते हैं, हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं। रक्षा कैसे करते हैं, कई प्रकार से हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु अपनी रक्षा करते हैं अपने नाखूनों से, दांतों से, लेकिन मनुष्य रक्षा करते हैं या तो वो अपने घर के सामने कुत्ते रखेंगे, या घर भी देखो तो उसमें 10-12 डोर होते हैं अंदर जाने में, एक तो मेन गेट में बाहर डोर, वहां कुत्ता भी होगा, सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे, घर में जाओगे तो एक लोहे का दरवाजा, फिर उसके अंदर कौन सा दरवाजा, लकड़ का दरवाजा, फिर उसके अंदर तब घुस, फिर पर्दा भी होगा, कर्टन भी होगा, और किसी को इतना डरा हुआ है कि एक छोटा सा होल है जिसमें से वो देखता रहता है। मतलब भय की कोई सीमा होती है। क्यों क्यों भय है? प्रहलाद महाराज कहते हैं भयम द्वितीया अभिनिवेशत शात। वो कहते हैं भय क्यों है इस संसार में व्यक्ति को, क्योंकि उसका मन दूसरी वस्तु में लगा है। कृष्ण के अलावा, भगवान के अलावा हमारा मन किसी भी वस्तु में लगेगा तो हम कभी भी अभय नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? भयभीत ही रहेंगे, ये शास्त्र कहते हैं। जब तक किसी व्यक्ति का मन भगवान में नहीं लगता तब तक वो निडर नहीं हो सकता, डर से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे जब अंधकार में जाते हैं तो उनकी जो ग्रैंड मदर होती है, बेटा बच्चे भयभीत होते हैं ना, उनको क्या सिखाते हैं? राम राम बोलो। क्या बोलो? हाँ, हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हमारे भय का कारण है क्योंकि हमारा मन अधिकतर रूप में इन चीजों में लगा हुआ है, विशेष रूप से अपने शरीर में लगा हुआ है। और जो चौथी चीज है इंद्रियों का उपभोग, जो मैथुन जीवन है। तो शास्त्र कहते हैं कि हर एक व्यक्ति यदि इतना अमूल्य जीवन मिलने के बाद भी बारंबार उन्हीं चीजों में अपने आप को लगाता है तो पशुओं से वो बढ़कर नहीं है। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज है, और वो क्या है? हमारे जो विवेक, या विवेक हम में है, या विवेक बुद्धि जो है वो हम में एक्स्ट्रा है, जिसके कारण हम अपने जीवन के वास्तविक मूल्य को जान सकते हैं या जीवन के वास्तविक गोल को समझ सकते हैं। सोचो आपके पास एक कार है और कार में जो पेट्रोल कैपेसिटी है, कार का जो टैंक है 30 लीटर है, लेकिन आप 1 लीटर डाल के चले जाओगे तो आपको बुद्धिमान बोला जाएगा या मूर्ख? मूर्ख बोला जाएगा। कैपेसिटी है उतना डाल के दौड़ो। तो मनुष्यों के पास इतनी कैपेसिटी है कि जिसके द्वारा वो भगवान को जान सकता है, लेकिन वो क्या करता है? एक पशु के समान अपने जीवन का इस्तेमाल करता है, एक पशु के भांति संकुचित बुद्धि से केवल ये निद्रा आहार आदि में मग्न रहता है। इसी कारण से हमें अपने उन्नत बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। सोचो एक व्यक्ति था, उन्होंने अपने पत्नी को एक एरोप्लेन गिफ्ट किया उसके जन्मदिन पर। तो पत्नी ने सोचा इसको क्या करो, तो वो रोड पर लेके आ गई, कहा इंडिया गेट के इस रोड पर चलाने के लिए। उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? उसे उड़ के ले जाने के लिए करना चाहिए। तो हमारी स्थिति वैसी ही है, इतना अमूल्य मनुष्य जीवन मिला है, इतनी अमेजिंग बुद्धिमता हमारे पास है, योग्यता है, समझ है, लेकिन हम बिल्कुल उस स्त्री के भांति हैं जिसको उड़ने के लिए विमान मिला, वो बैलगाड़ी के समान इधर रस्ते में चला रही है। तो हमारे पास इतना अच्छा देह हमें मिला है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल एक मूर्ख व्यक्ति के भांति कर रहे हैं। उसके पास हमारे पास वो कैपेसिटी है, इसलिए हमें इन चारों चीजों से आगे सोचना चाहिए। थिंक अहेड, आगे की सोचो, और आगे क्या सोचो, बल्कि मनुष्य के पास इतनी लॉजिकल बुद्धि है। एक इंडियन व्यक्ति था, वो अमेरिका में जाके सेटल्ड हुआ, और वहां जाकर उसने $250,000 की एक फेरारी खरीदी। कौन सी कार खरीदी? फेरारी। अभी कुछ दिन हो गए, नई थी, उसको ना इंडिया आना था वापस कुछ 15 दिन के लिए। तो उसने सोचा इतनी महंगी कार मैंने खरीदी, पार्किंग वहां कैसे इसको छोड़ के जाओ, तो पार्क करने के लिए सेफ रहे 15 दिन, उसके लिए उसने क्या योजना बनाई होगी? उसने सोचा, उसके दिमाग इतना काम कर रहा था, उसने क्या किया, बैंक में गया, बैंक से लोन लिया $5,000। कितने डॉलर? $5,000 लिए, और सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास क्या रखी? अपनी कार रखी, और वो इंडिया आया, और 15 दिन के बाद वापस चला गया। तो उसको केवल खर्चा कितना आया था? इंटरेस्ट $15 का। तो सोचो ये कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, इतनी हजारों की कार होने के बावजूद भी लोन लेता है, किस चीज के लिए? अपनी फेरारी को सेफ रखने के लिए। तो ऐसी बुद्धि पशुओं के पास हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हमारे पास भगवान की ये सर्वश्रेष्ठ देन है, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म क्या है अधिक है हमें। तो इसलिए भगवद गीता क्या है, धर्म शास्त्र है। भगवद गीता के जो की जो समझ है हमें भगवान के भक्तों के माध्यम से मिलती है। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं वो भगवद गीता को प्रदान कर सकते हैं, जिस माध्यम से भगवान अर्जुन को प्रदान करते हैं। तो अर्जुन ने भगवान से डायरेक्ट भगवद गीता सीखी, तो कई बार लोग कहते कि हमारा उतना सौभाग्य नहीं है जितना अर्जुन का था। अर्जुन ने तो डायरेक्ट कृष्ण के सामने बैठकर उनसे भगवद गीता को सुना था, लेकिन कोई व्यक्ति भगवान से आने वाली जो शिक्षा या परंपरा उनके भक्तों के माध्यम से वही ज्ञान को ले लेता है, स्वीकारता है, तो उतना ही सौभाग्यशाली है जितना अर्जुन क्या थे, सौभाग्यशाली थे। इसी कारण से हमें ये जो भगवद गीता है जिसे धर्म शास्त्र कहते हैं, तो ऐसे कई सारे महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने भगवद गीता की शिक्षा या भगवद गीता पर कॉमेंट्री दी है। तो जो भगवद गीता के एक महान आचार्य थे बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने कहा कि ये जो भगवद गीता धर्म शास्त्र है, क्योंकि भगवद गीता में क्या है, धर्म की शिक्षा है। क्योंकि इसका पहला जो अक्षर है वो कौन सा है, खोलिए भगवद गीता का पहला श्लोक, पेज नंबर 29। तो ये जो ग्रंथ है उसकी शुरुआत ध से होती है और उसका यंड किससे होता है, आखिरी श्लोक गीता का देखिए, इसकी शुरुआत हुई है धृतराष्ट्र से, ध से, या धर्म क्षेत्र के ध से, और उसका आखिरी श्लोक क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्णो, पेज नंबर 561, 561, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो भगवद गीता की शुरुआत ध से होती है और यण किससे होता है, म से होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भगवद गीता ये महान धर्म की शिक्षा देती है और जो धर्म है उसकी स्थापना करती है। इसलिए हमें एक पशु के भांति अपना जीवन गवाने की आवश्यकता नहीं है। और ये भौतिक जो सुख है, और सुख हमें इन चार चीजों से ही प्राप्त होता है, आहार निद्रा भय मैथुनम, इन चार चीजों को ही हम सुख मान के बैठते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब पार्श्विक कार्य है। इसलिए शास्त्र कहता है निश्रेयसाय विषया खलु सर्वतर्षात्, कि किसी भी शरीर में जाओ ये भौतिक सुख जिसके लिए हम दिन रात लालायित है वो वैसे ही प्राप्त होने वाला है, उसको अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता जीवन में नहीं है। किसी चीज के लिए हमें अपना जोर लगाना है, किसी चीज को हमें प्रयास करना है, तो भगवान को जानने के लिए करना चाहिए। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम् बहुसंभवान्ते, भागवतम कहते हैं कि लब्ध्वा, बहुत जीवनों के बाद आपको ये मनुष्य का देह मिला है, अनेक अनेक योनियों का भ्रमण करने के बाद। इसलिए इस मूल्यवान शरीर का हमें इस्तेमाल करना चाहिए भगवान को समझने के लिए। तो यदि हम सुख चाहते हैं लेकिन सुख प्राप्ति में बाधा क्या है हमारे, कौन बता सकता है सुख प्राप्ति में क्या क्या चीजें बाधक है, भौतिक इच्छाएं। सुख प्राप्ति में भौतिक इच्छाएं बाधा है, वो तो और प्रेरित करते हैं हमें सुख प्राप्ति करने के लिए। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए क्या बाधा हो सकती है, क्लेश है, तो कई सारी बाधाएं हैं। लेकिन भगवद गीता में भगवान कहते हैं चार प्रमुख बाधाएं हैं, पेज नंबर 422, अध्याय 13 श्लोक संख्या 9, तो भगवान यहाँ ज्ञान की चर्चा करते हैं, वास्तविक ज्ञान क्या है, तो उसमें से हाँ कई सारी चीजें बताते हैं। उसमें से ये जो नवा श्लोक है, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान क्या है, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। तो हमारे सुख में जो बाधा है वो इन चार चीजों से आती है। हाँ, तो भगवान यहाँ क्लियरली कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो भगवद गीता को समझने के लिए व्यक्ति को पहले इन चार चीजों को समझना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन को भगवान ने पहले ये बोला, उस श्लोक आपको ठीक से देखेंगे तो भगवान कहते अनुदर्शनम, इनका दर्शन पहले करो। किसका दर्शन पहले करो? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और बाद में मेरा दर्शन हो सकता है उचित रूप से। तो इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि वास्तव में सुख में बाधा क्या है, ये चार चीजें हैं। तो जन्म हमारे लिए बाधा है, बारंबार हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और वास्तव में इतनी भयावह स्थिति है जन्म ग्रहण करना। एक स्त्री के गर्भ में जाना, भागवतम में पूरा एक अध्याय है कि किस प्रकार से पुरुष के वीर्य से एक जीव शरीर में प्रवेश करता है स्त्री के, और कैसे हर रोज कितनी कितनी मात्रा में बढ़ता है, कब उसको चेतना आती है, 7 महीने का होता है तो चेतना उसकी विकसित हो जाती है और वो देखता है अपने आप को कि मैं कहाँ यहाँ फंस गया हूँ। उसकी स्थिति तो ऐसी होती है कि जैसे एक बैग को उल्टा करके रखा हो उसे, और उल्टा लटकते रहता है और चारों ओर से उसको पैक किया गया है, और वो केवल चिल्लाता है, रोता है, वहां उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब बालक पेट में होता है गर्भ में, तो बहुत ही उसकी जो स्किन है बहुत सॉफ्ट होती है, माँ चाहे खट्टा खाए, तीखा खाए, मिर्च मसाला खाए, तो वो ज्यादा पीड़ा किसे होती है, उस बालक को होती है, और वो उसको सारे अपने पूर्व जन्म याद आते हैं, और इतने याद आता है कि वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे इस कष्टमय स्थिति से बाहर निकालो। फिर एयर का प्रेशर क्रिएट होता है, भागवत कहता है कि माँ के पेट में हवा का प्रेशर क्रिएट होता है और एक बालक रोते हुए खून से लथपथ कहाँ आता है, इस संसार में उसका अराइवल होता है। हाँ, कैसे अराइवल होता है, ऐसी स्थिति में अराइवल होता है, ना उसके पास कपड़े हैं, ना कोई अपने साथ बैग लेके आता है, ना मोबाइल लेके आता है, कैसे आता है, खाली आता है। ऐसा अराइवल इस जगत में है। हमें किसी जगह जाना होता तो हम पूरी तैयारी के साथ जाते कि नहीं जाते, लेकिन जीवात्मा जब इस जगत में आता है तो बिना तैयारी के आता है, अपने साथ एक वस्तु लेके आता है, अपने कर्मास को लेके आता है। तो जब वो इस जगत में जन्म लेता है, और वो जन्म ही अपने आप में कष्ट है, तो जन्म में जब माँ के गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे फिर से ऐसी विकट स्थिति में मत डालो, मैं नहीं जाना चाहता, मैं बाहर आऊंगा ना आपका बहुत अच्छा भक्त बनूंगा, आपकी सेवा ऐसी करूंगा कि सारा विश्व चकित हो जाए, लेकिन यह बाहर की हवा जो क्या है बहुत दूषित है, यहाँ आकर हाँ सारे उसका वेट करते रहते हैं, वेटिंग खड़े रहते हैं ना सारे, कहते कब आएगा बच्चा बाहर, कब आएगा, सब वेट करते रहते हैं, और सब आते तो ये लोग नाचते गाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, उसके लिए केक लेकर खड़े रहते हैं, सारे हंसते हैं, लेकिन एक ही क्या करता है, रोता है। तो डॉक्टर कहता है कि बच्चा रो रहा है मतलब नॉर्मल है, ये सही है, मतलब डॉक्टर उस समय एस्ट्रोलॉजर का काम करता है, वो भविष्यवाणी बता देता है कि पूरा जीवन इसको रोते ही रहना है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन इस जन्म को देखो, और जन्म के बाद क्या देखो, बुढ़ापा देखो। बुढ़ापा ये ऐसी वस्तु है जिसको हम कभी भी नहीं चाहते। एक श्लोक आता है जिसमें वो कहते हैं गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता भ्रष्टाच दंतावली दृष्टि नश्यते वर्धते बधिरता वक्रच लालायते। वो कहते गात्रम संकुचितम, सारी चमड़ी ऐसी ना सूखने लगती है, गतिर विगलिता भ्रष्टाच दंतावली, उसकी गति धीरे हो जाती है, भ्रष्टाच दंतावली, दंत की जो जैसे दीपावली होती है ना वैसे दंतावली है, वली मीन्स लाइन, दांतों की सारी लाइन खत्म हो जाती है मुंह में और दृष्टि कम हो जाती है, बधिरता आ जाती है और हम ऐसे वक्र होके चलने लगते हैं, पीठ यू टर्न लेती है, ऐसे यू टर्न मारता है व्यक्ति ना, पहले तो ऐसे सीधा चलता है, वृद्धावस्था आती है तो वापस यू टर्न लेने लगता है। वाक्यम ना द्रियते च बांधव जनो भार्या न शुश्रूषते, कोई बंधु बांधव रिश्तेदार मित्रगण उसकी जो वाक्य है उसको कोई वैल्यू नहीं देता है, और पत्नी भी सेवा करना बूढ़े पति की छोड़ देती है इस संसार में। इस कारण से शास्त्र कहते हैं ये जो दर्दनाक वस्तु हमारे सामने है जो वृद्धावस्था है, एक्चुअली हमने जब जन्म लिया उसी के साथ दूसरे एक वस्तु ने भी जन्म लिया है, बुढ़ापे ने भी जन्म लिया है और मृत्यु ने भी क्या किया है, जन्म लिया है। तो भगवान इस चीज पर जोर देते हुए अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन इस चीज को समझने का या देखने का प्रयास करो। और वृद्ध व्यक्ति को हम घर में भी इसलिए भी रखते हैं कि वो काम करे, कोई कहता है ना, बहू कहती कि मम्मी जी है ना काम करने के लिए घर में, हाँ तो इस प्रकार रखते हैं, तो किस लिए रखते हैं, हमारा स्वार्थ है, कोई उसको केयर करने के लिए देखभाल करने के लिए नहीं रखता है। तो इसी कारण से भगवान हमें प्रेरित करते हैं कि इन दुखों को देखो, और अगला दुख क्या है, बीमारी। बीमारी पहले देखो 50 साल पहले HIV एड्स नाम की बीमारी अस्तित्व में थी, नहीं थी, तो मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि हमने बहुत उन्नति की है, लेकिन अधिकतर रूप में हमने कई सारे कष्टों को आमंत्रित किया है। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कष्ट दोषे कुले नास्ति व्याधिना कोन पीड़िता, कौन सा ऐसा परिवार है जिसमें दोष ना हो, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दुख या कष्ट ना हो उसके शरीर में, हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कष्ट है। और आगे कृष्ण कहते हैं चौथी चीज वो क्या है, मृत्यु है। मृत्यु ये वास्तव में एक ऐसा ट्रूथ है जिसको कोई भी व्यक्ति ये करना नहीं चाहता, स्वीकार नहीं करना चाहता, और हर एक व्यक्ति को उसे स्वीकार करना होगा। एक बार हमारे महाराज बता रहे थे कि उन्होंने सुना कि एक फ्लाइट जा रहे थे, ये सच घटना है, तो जो एयर होस्टेज होती है ना फ्लाइट्स में, तो अभी सोचो कितने ऊपर हजारों फीट ऊंचाई पर फ्लाइट जाती है, तो वहां अचानक उसके डोर खुल गए कैसे पता नहीं, और उसमें से एक एयर होस्टेज बाहर, और फिर वो डोर बंद हो गए। तो महाराज कह रहे थे कि आप सोचोगे कि हम यमराज हमें यहां लेने आ रहे हैं, लेकिन आप चाहे जितना मर्जी ऊपर जाओ यमराज क्या करेंगे, आपको ऊपर से ऐसे उठा लेंगे। तो मतलब हम कितना ही सोचे हैं कि मैं सेफ हूं, मुझे मृत्यु नहीं है, हाँ तो उससे हम बच नहीं सकते। इसी कारण से प्रभुपाद कहते थे इस संसार का आठवां अजूबा कुछ है, मतलब आठवां आश्चर्य या आठवां वंडर कुछ है, तो वो हमेशा प्रभुपाद बोलते थे कि जो उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने दिया था दक्ष को, यक्ष ने पूछा कि हे युधिष्ठिर बताओ इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, अहानी अहानी भूतानी गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य आता परम। तो जो व्यक्ति संसार में मर रहे हैं अपने आंखों के सामने देख रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सोचते कि ये मृत्यु मेरे लिए नहीं है, ये तो उनके लिए बनाया गया है, मेरे पड़ोसी के लिए है, दूसरे देशवासियों के लिए है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, तो ये भी एक आश्चर्य है। इसलिए भगवान मृत्यु का वर्णन करते हुए भगवद गीता में हमें कहते हैं दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 27 पेज नंबर 77। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं जातश ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश च तस्माद परिहरि अर्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि, कि हे अर्जुन जिसमें जन्म लिया है उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। पेज नंबर 77 27 नंबर श्लोक, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ये सिखा रहे हैं कि वास्तव में जिसने जन्म लिया इस जगत में उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति और एक यंग व्यक्ति एक फॉरेस्ट से गुजर रहे थे रास्ते से, तो अचानक एक शेर उनके सामने आ जाता है। शेर उनके सामने आता है तो अभी दोनों जो एक बूढ़ा व्यक्ति और युवा व्यक्ति दोनों कांपने लगे शेर को अपने सामने देखकर। शेर मीन्स क्या है, साक्षात मृत्यु आपके सामने खड़ी है। आपने देखा ना वो वीडियो जू में रिसेंटली दिल्ली में, देखो उसके सामने मृत्यु खड़ी है और हम सोच रहे वो उसके लिए है, मैं यहाँ पेड़ के नीचे सुरक्षित हूँ या मैं रेल भवन में सुरक्षित हूँ या घर में सुरक्षित हूँ, नहीं। तो ये जब दो आगे जा रहे थे रास्ते में शेर खड़ा था, तो ये जो बूढ़ा व्यक्ति कहता देखो मेरा ना कोल्ड ब्लड है। कौन सा ब्लड है? कोल्ड, ठंडा खून है इसका ना, गरम गरम खून है इसका, तुम पी सकते हो। तो वो शेर कहता है आज मुझे एक कोल्ड ड्रिंक पीने की बहुत इच्छा हो रही है। क्या पीने की? तो मतलब हम जो मर्जी उपाय करें इस भौतिक संसार में हमारे लिए है डेथ, इसलिए कहते हैं ना एज श्योर एज डेथ, डेथ हमारे लिए निश्चित है चाहे हम जैसे भी करें। तो मृत्यु ऐसी वस्तु है व्यक्ति के लिए, कोई किसी के लिए नहीं संसार में। इसलिए शास्त्र कहते धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वारी सुता स्मशाने देह चितायाम। कहते धनानि भूमो, पहले जमाने में लोग अपना धन जमीन के अंदर रखते थे, अभी तो बैंक्स में रखते हैं। तो मरोगे तो आपका धन जमीन के अंदर रहेगा। धनानि भूमे पशवच्च गोष्ठे, आपके पास गाय भैंस बैल जो भी है वो आपके गोष्ठ में रहेंगे। अभी तो कार्स है, कार आपके पार्किंग एरिया में रहेगी। नारी ग्रह द्वारे जो आपकी प्रिय पत्नी है भारिया है घर के दरवाजे तक रोते रोते आएगी। और सुता स्मशान आपके जो मित्रगण है रिश्तेदार है वो स्मशान तक आएंगे। देह चितायाम, ये बॉडी जिससे हम इतना प्रेम रखते हैं अपने बॉडी से, ये कहाँ तक आएगा हमारे साथ? चिता के ऊपर। परलोक मार्गे, फिर अकेला ये जो शरीर है या जीव है वो अकेला आगे ट्रेवल करेगा। इसी कारण से मृत्यु हमारे लिए निश्चित है और शास्त्र कहते मृत्यु ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति के गले के ऊपर एक टंगी हुई तलवार है और वो कभी भी गिर सकती है। इसलिए भगवान हमें प्रेरित करते हैं कि ये मनुष्य जीवन केवल एक कुत्ते बिल्ली जैसे मरने के लिए नहीं बना है। वो आते हैं जीवन जीवन जीते हैं और मर के चले जाते हैं। तो मनुष्य को एक कुत्ते बिल्ली जैसे के समान नहीं मरना है, हमें कुछ अचीव करना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है और भगवान को हम अपने जीवन में समझ सकते हैं। तो कई बार आप लोग सोच ही रहे होंगे हमने तो रजिस्टर कर लिया कि गीता का वो सुनेंगे, हम कुछ कथाएं सुनेंगे मधुर मधुर कथाएं, लेकिन ये तो डरा रहे हैं हमें। हाँ, ओपन 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 एरिया में हमें सीधा सीधा डरा रहे हैं। जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है और क्या है, बीमारी है, ये चार भी नहीं है और कितने हैं? और तीन भी है, जैसे सेल होता है ना, एक के साथ एक फ्री या दो फ्री, तो ये चार के साथ और तीन दुख है। कौन सा दुख है? एक है आदि दैविक, आदि भौतिक और एक है आध्यात्मिक। तो तीन प्रकार के क्लेश भी शास्त्र कहते हैं। लेकिन क्यों ये सब चर्चा की जाती है गीता में भी? क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति इसको नहीं समझेगा तब तक, जब तक वो इस जगत में दुख को नहीं देखेगा तब तक वो उचित रूप से भगवत गीता को भी समझ नहीं सकता। ये भी एक प्रकार की योग्यता है, तब हम भगवान के जो ज्ञान है उसको जान सकते हैं। इसी कारण से भगवान इस चीज की चर्चा करते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, पेज नंबर 283, पेज नंबर 283। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो यहाँ भगवान इस 15वें श्लोक में इस जगत के नेचर का वर्णन करते, दुखालयम अशाश्वतम। तो एक 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 टीकाकार थे, उन्होंने इस श्लोक को बोला कि भगवान यहाँ तो सीधा सीधा बोल रहे हैं, दुख क्या है, अशाश्वत है। क्या कह रहे, समझ गए आप इस वर्ड को? यह सीधा बोला है कि दुखों से पूर्ण ये जगत है, मतलब इस जगत के दो नेचर वर्णन किया है स्वभाव। एक तो ये दुखों से भरा है और दूसरा ये जगत क्या है, टेम्पररी है, अशाश्वत है। लेकिन जो भगवत गीता पर एक व्यक्ति ने टीका लिखी, उसने कहा यह भगवान कह रहे हैं दुख है लेकिन कितना है, अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। तो भगवत गीता को भी उचित सोर से हमें समझना चाहिए, तभी भगवत गीता की शिक्षा को समझा जा सकता है। इसलिए भगवान कहते कि इस जगत में जो भी जीव हैं, वो हमेशा चिंताग्रस्त हैं, दुखों से ग्रस्त हैं। देखो आजकल कोई व्यक्ति सीधा सीधा नहीं कहता कि मैं ना दुखी हूं, क्या कहते हैं, बहुत टेंशन चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है। वास्तव में ये मॉडर्न वर्ड हमने ढूंढ के निकाले हैं। टेंशन का मतलब ही इसका जीवन दुख से भरा पड़ा है। टेंशन बोलने से क्या होता है कि लोगों को लगता है ना बहुत बिजी रहता है, हाँ, और टेंशन बोलने से ये भी लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा है, हाँ, और जिसके कारण पूरे दिन बिजी रहता है, इसको इसलिए टेंशन है। लेकिन टेंशन का सीधा सीधा अर्थ क्या है, ये व्यक्ति सबसे अधिक दुखी है। लेकिन हम इस शब्द को यूज करना नहीं चाहते, हम क्या करते हैं, उसको ढक के रखते हैं और सपने देखते रहते हैं कि बस अभी सुखी होने वाला हूं मैं। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि हाँ, ये जो भौतिक जगत का स्वभाव है, भौतिक जगत को आप देखने का प्रयास करो। और अर्जुन के जीवन में भी देखो, उसके सामने भी एक महान कष्ट खड़ा था, और वो कष्ट खड़ा था तो उसको भगवत गीता का नॉलेज भी कैसे रहा, बहुत सटीक रूप से समझ में आ गया। तो भगवान इस महायुद्ध का अरेंज करते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, जहां जब सारे योद्धा खड़े हो गए थे उस युद्ध भूमि में, तो अर्जुन भी भगवान के साथ थे, और भगवान अर्जुन अपनी ओर भगवान को चाह रहे थे, और भगवान ने उनका सारथ्य स्वीकारा था। क्या बने थे भगवान, सारथी बने थे। हाँ, मतलब इतने बड़े हैं लेकिन फिर भी अपने भक्त के लिए ड्राइवर बनते हैं। तो जब भगवान ने सारथ्य स्वीकार किया, तो अर्जुन ने भगवान को सबसे पहले आदेश दिया। क्या आदेश दिया, आप देखिए पेज नंबर 39। तो जब सब प्रकार से सारी सेना दोनों ओर की खड़ी थी, उस समय भगवान को आदेश देते हैं अर्जुन। अर्जुन उवाच, 39 पेज नंबर, सेनयोरु भयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्षहम योद्धु कामान वस्थितान कैमर्यास योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में। तो यहाँ वो कहते, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सको। तो इस प्रकार से जब भगवान को वो आदेश देते हैं कि मुझे देखना है, किन्हें देखना है, मुझे किन से युद्ध करना है, तो जब भगवान का ये आदेश वो स्वीकार करते हैं, और वास्तव में ये भगवत गीता केवल अर्जुन ही नहीं सुन रहे थे बल्कि और भी एक व्यक्ति सुन रहे थे अपने घर में बैठकर। कौन थे वो, धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र भी भगवत गीता सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन संजय के द्वारा, जो व्यास देव के शिष्य थे, और संजय में व्यास देव की कृपा के कारण दो योग्यताएं थी। एक योग्यता क्या थी कि उनकी कृपा के कारण कुरुक्षेत्र का युद्ध का जो वर्णन है वो देख सकते थे दिल्ली में बैठकर। धृतराष्ट्र कहाँ बैठे थे, हस्तिनापुर में, यहाँ दिल्ली में वो निवास कर रहे थे। और दूसरा, संजय के पास ये एक अमेजिंग गुण था कि जो भी योद्धा वहां युद्ध कर रहा है उसके मन में क्या चल रहा है वो भी संजय समझ सकता था। तो जब ये धृतराष्ट्र यहाँ बैठकर सुनते जा रहे थे संजय के माध्यम से, और वहां अर्जुन भगवान से भगवद गीता को सुन रहे थे, तो जब अर्जुन ने ये आदेश दिया भगवान कृष्ण को, तो भगवान पहले अध्याय में ही बोलना शुरू करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भगवद गीता का पहला अध्याय ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भगवद गीता कहाँ से शुरू होती है? लोग कहते हैं दूसरे अध्याय में, क्योंकि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान एक प्रकार से बोलना शुरू करते हैं। हाँ, तो भगवान इसी अध्याय में भी बोलना शुरू करते हैं, पेज नंबर 41। तो भगवान ने जब देखा कि अर्जुन देखना चाहता है किन से युद्ध करना है, तो भगवान ले चलते उसे। भीष्म द्रोणा प्रमुखतः सर्वेक्षाम च महीक्षिताम वाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। लेकिन उससे आगे अमेजिंग चीज भगवान बोलते हैं, जिसको सुनने के कारण अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया, और जिसको सुनकर उन्होंने अपने जो शस्त्र है गांडीव धनुष वो छोड़ दिया और अर्जुन रोने लगा। क्या सुना? भगवान कहते तत्र पश्चान, अगला श्लोक 26वां 41 पेज में, तत्र पश्चान सितान पार्थ पितृन अथ पितामहान आचार्य मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा श्वशुरान सुरदय चैव सेनयोरु भयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, भगवान ने यहाँ एक भी शब्द यूज नहीं किया कि ये देखो दुर्योधन है, ये देखो भीष्म आदि है। यहाँ भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते तुम्हारे चाचा है तुम्हारे सामने, तुम्हारे ताऊ है तुम्हारे सामने, पितामह है, गुरु है, मामा है, भाई है, पुत्र आदि है, मित्र है, ससुर है, शुभ चिंतक है। तो अर्जुन के साथ उन सबका जो संबंध है ना वो दिखा दिया। हाँ, क्या दिखा दिया? अपना जो रिलेशन है, संबंध है, जिसके कारण अर्जुन ये सुनकर बहुत द्रवित हो जाते हैं, और द्रवित होकर अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं। अर्जुन कहते कि मुझे युद्ध नहीं करना है। हाँ, तो इस अध्याय के जो अगले श्लोकाज हैं उन श्लोकों में पहले अध्याय के अर्जुन बोलता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन अपने चार कारण उनको बताते हैं एक प्रकार से। क्या कारण था? कि अर्जुन को बहुत दया आ गई थी। पहला कारण था कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके हृदय में इन सारे सबके लिए क्या थे? दया थी। और दूसरा कारण अर्जुन प्रदर्शित करते हैं कि मैं इन सबको मार के अकेले एंजॉय करना नहीं चाहता, अब मैं भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूं। यही बात अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भी बोली है। अर्जुन कहते हैं कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर सकता हूं, लेकिन मुझे क्या नहीं चाहिए? जो खून से लथपथ ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। देखो पेज नंबर 56 श्लोक नंबर 5, अर्जुन कहते हैं गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि यह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुणि हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्दान। पेज नंबर 56, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो किंतु है तो गुरुजन ही, यदि उनका वध हो जाता है तो हमारे द्वारा भोग्य वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। वो कहते मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं एंजॉय नहीं करना चाहता उनके अलावा। और तीसरी चीज वो कहते हैं उनको मार के क्या होगा? पाप ही हमें लगेगा, जिसके कारण अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी तीसरी चीज उन्होंने कहा कि मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। और चौथा रीजन अर्जुन कहते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इससे क्या होगा, परिवार जो परिवार है उसकी जो परंपराएं हैं वो खत्म हो जाएगी। हाँ, पेज नंबर 48, हाँ, जिसमें श्लोक नंबर 39 है, वो कहते कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके अगला श्लोक 40 नंबर, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अब अगला श्लोक 41, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से भगवान को अर्जुन ये चीजें बताते हैं और वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान के सामने या अर्जुन अपने सारे शस्त्रास्त्र रख देते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान चकित हो जाते हैं अर्जुन के इस आचरण को देखकर, और इस सिचुएशन से उनके कर्तव्यों का पालन फिर से करने के लिए भगवान किस चीज का उपदेश देते हैं? भगवद गीता का उपदेश देते हैं। तो भगवान क्यों भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को ही देते हैं? पेज नंबर 147 में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 3, चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 3, तो जिसमें भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें क्यों ये उपदेश प्रदान कर रहा हूं? क्योंकि अर्जुन के पास दो गुण थे, सैवायम मयात्यद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी ने सखा चेति रहस्यम हे तद उत्तमम। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए दो चीजें भगवान उनको कहते हैं कि भक्तोसी सखासी। तो भक्त भी थे और उनके सखा थे, केवल सखा ही नहीं थे, उनका यही गुण नहीं था, और एक महत्वपूर्ण गुण था कि अर्जुन ने कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार किया था और वो कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते थे। ये भी एक गुण हम भगवद गीता को समझने के लिए है। तो हम कल फिर से चर्चा करेंगे, आगे कल हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करता है। तो फिर हमें भी भगवान को स्वीकार करने के लिए आध्यात्मिक गुरु की शरण आवश्यक है। तो गुरु के क्वालिटीज और वो ऑथेंटिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर दूसरे अध्याय में भगवान ने जो शिक्षाएं हमें सिखाई हैं, आत्मज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ये जो शिक्षा है भगवद गीता के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं इस भगवद गीता को समझने के लिए।
हरे कृष्णा
सब एक साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता के पदित पावन श्रील प्रभुपाद के गौर प्रेमानंदे
सरस्वती प्रभु जी के।